ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप सवेरे शाम को रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक है। यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, लिंक आपका नहीं खुल रहा है या लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई हम सबके लिए सुझाव है तो वो भी भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही मां मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। पहली बात, बाप है अविनाशी वैद्य। बाकी सारे डॉक्टर मर सकते हैं, बदल सकते हैं, परंतु ये एक ऐसा वैद्य है जो अविनाशी है, क्योंकि बाकी सबके शरीर नाशवान है और इसका शरीर जो है कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, और ये अजर अमर और अविनाशी है। और ये महामंत्र भी देते हैं तो किसको देते हैं? आत्मा को देते हैं। और वो महामंत्र भी है तो क्या है? हमें कोई महामंत्र दिया है बाबा ने आज तक? महामंत्र दिया कोई बाबा ने हमें आज तक?
मन मना भव,
मन मना भव,
अमर आत्मा हो,
आप अमर आत्मा हो,
आप अमर आत्मा हो। जैसे बाबा अमर है वैसे मैं भी अमर हूं। ये है महामंत्र, और इस महामंत्र के साथ हमें पूरा करने के लिए दिया मन मना भाव। मन मना भाव अपने आप में अधूरा है, मन मना भाव अपने आप में अधूरा है। और क्या बोलते हैं, अब जब हम कहेंगे कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये भी सिर्फ सुनने से हमारे जीवन में नहीं आएगा। उसके लिए सलाह दिया कि जो कुछ मैं तुम्हें बताता हूं वो बैठकर अपने आप को समझाओ। जो बाबा हमें बता रहे हैं, जो बाबा हमें दे रहे हैं, वो हमने बैठकर अपने आप को समझाना है, स्वीकार कराना है, तब है वो महामंत्र। क्योंकि बाबा की श्रीमत मिल गई, पर तो श्रीमत को करना क्या है? अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। अब मन मना भाव, यदि हमें कोई असुर व्यक्ति मिला है, दुष्ट व्यक्ति मिला है, उसने हमें कोई सलाह दी है और वो हमने मन मना भाव कर लिया है, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और शिव बाबा ने सलाह दी है, उसको हमने बैठकर मन मना भाव किया है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है कि ये भी क्या महामंत्र मन मना भाव क्या करना है, ये भी हमारा निर्णय करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और ये निर्णय भी बाबा आकर कराते हैं, हमें ये भी समझाते हैं कि ये आसुरी मत है और ये ईश्वरीय मत है। तो इस प्रकार से बाबा आकर हमें महामंत्र देते हैं। परंतु एक महामंत्र यदि कहा जाता है, पर वो भी तभी पूरा होता है जब हम बाबा की श्री मत को अपने आप को बैठकर समझाएं। ये मन मना भाव करें। मतलब माम एकम याद करना भी साथ में जरूरी है। माम एकम याद करो, मन मना भाव, अपने मन को बैठकर समझाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, तब हम जो है ना सब दुखों से दूर हो जाएंगे। प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। माया को हमने कोई दुख दिया है, हमारा कोई उसके साथ दुश्मनी है, हमने उसका क्या किया है जो हमारे बीच में विघ्न डालती है? उत्तर, नंबर एक, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। हम क्या लेते हैं माया से? हम माया के ग्राहक कैसे बन गए? माया को लेने वाले हम ही हैं, और कोई क्या लेगा? हम आत्मा इस संसार में आकर भोगता बनने के कारण माया का दरवाजा खोलते हैं और माया को अपने में आने की छुट्टी देते हैं। यदि हम इस संसार को नहीं भोगने के लिए आए तो माया का दरवाजा खुल नहीं सकता। इस संसार को भोगना माना माया को निमंत्रण देना। जैसे जैसे भोगते जाएंगे माया हमारे जीवन में अपना आकार बढ़ाती जाएगी, उसकी ग्राहकी खत्म होती है। अब वो कहां जाएगी बेचारी? उसे हमारे पास आकर के इस संसार को भोगने का उसे भी आनंद आ रहा है, इसलिए वो विघ्न डालती कि ये अब मेरे को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, अपने जीवन से मुझे बाहर निकाल रहे हैं, तो वो अपना आखिरी दांव तक चलती है कि मुझे मेरे बिना तुम्हारा जीवन बेकार है।
जी, हाँ जी, माया को आनंद आता है, माया कोई आत्मा है?
माया आत्मा नहीं है, रावण भी आत्मा नहीं है, परंतु हम उसको यूज कर रहे हैं। वास्तव में माया तो कुछ है ही नहीं ना, माया माना नहीं है जो, फिर हम उसको क्या समझ रहे हैं? वो हमारे ही गुण और शक्तियों के अभाव का नाम है, और उस अभाव के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था कि शराब भी पीते हैं खुशी के लिए, भाई ये खुशी मिली है, बस दारू तो चाहिए, कड़वा पानी के बिना खुशी का कोई मजा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा मुंह जला रही है, तुम्हारे फेफड़े जला रही है, तुम्हारा गला जला रही है, तुम्हारे शरीर का सत्यानाश कर रही है, तुम्हें व्यवहारहीन बना रही है, तुम्हारा व्यवहार गंदा हो जाता है। एक फायदा हो तो बताओ उसका, जरा एक फायदा तो बताओ। विकार में जाना, एक फायदा तो बताओ। संतान उत्पत्ति के लिए आप विकार में जाओ भाई, क्योंकि पतित हो गए हैं, परंतु ये भोजन थोड़ा ही है, ये जीवन थोड़ा ही है। मत लोभ है, मोह है, जितने भी हमारे अंदर विकार आए हैं, हमारी बुद्धि के अंदर जो अज्ञान का जो अभाव आया है, अज्ञानता आई है, वो हमारे कारण आई है। हमने उसे स्वीकार किया है, हमने उसको एंट्री दी है, हम उन झूठी बातों का सुख ले रहे हैं, जिसको हमारे ऋषियों ने समझा भी सही कि झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोत, झूठे सुखों को सुख कह रहे हैं और मन में बड़े खुश हो रहे हैं, वाह मजा आ गया, बड़ी तीखी थी, गले तक अच्छी तरह स्वाद आया इसका, बताओ को मतलब हुआ? एक पैग क्या पीना, दो पीक, चार पैग, आठ पैग, दस पैग, पता नहीं, फिर छोड़ने को दिल ही नहीं करता उनका। तो ये सारे संसार के जो कुछ भी है, अभी खाना है, बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन बने हैं यार, आज दो फालतू खा लेते हैं, खा लो भाई चार खा लो, मीठे तो लगेंगे परंतु करेंगे क्या, आप पूरियां बनी है ढेर सारी खा लो पूरियां, जो भी अच्छी से देसी घी खा लो आप ज्यादा से ज्यादा, क्या क्या है उसमें मुझे बताओ। तो ये सारी बातें झूठे सुख है, संसार के अंदर उतना शरीर को खिलाओ जितना ये शरीर चलता रहे, उससे फालतू खिलाने का कोई फायदा नहीं है। हमने खाने के लिए नहीं जीना है, हमको जीने के लिए खाना है, ये माया है जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं। जीभ के स्वाद के लिए, आंखों की कानों के सुनने के लिए बड़ा मीठी आवाज है, बड़ा अच्छा भजन है, परंतु भजन तो अच्छा है परंतु मेरे जीवन में कोई परिवर्तन ला रहा है तो ठीक है, मेरा जीवन सुधरना चाहिए, वो है वो सच्चाई को समझना। ये सच परमात्मा ही आके समझाते हैं। जब अविनाशी वेद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, बाबा आकर दवाई देती है तो ये विकार उथलते हैं जो पहले कभी तंग नहीं करते थे, बाबा का बनने के बाद उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है हाँ पहले तो हमारी मर्जी थी जब आ जाए तब चले जाए, तो अब तो रास्ता बंद हो रहा है, एक बार बस एक बार आज शराब पीऊंगा उसके बाद फिर कभी नहीं पीऊंगा, उसका एक बार कभी भी खत्म नहीं होता। ये विकार जो है सारे एक बार बस, ये कभी खत्म नहीं होते, भोगाम ना भुगता, भोगों को कभी भी भोगा नहीं जा सकता, वो कभी खत्म नहीं होंगे, ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, व्यमेव भुगता, हम भुगत हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे परंतु विकार खत्म नहीं होंगे, विकार बढ़ते ही जाएंगे, चाहे वो लोभ हो चाहे वो मोह हो चाहे वो अहंकार हो तो चाहे वो क्रोध हो तो चाहे वो काम हो, कुछ भी हो ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं। तो इसलिए माया एक हमने अलग से नाम दे दिया, वास्तव में माया कोई अलग से कुछ है नहीं, वो हम ही है, हमारे अंदर ही गुणों का अभाव ही माया है और हम ही झूठे सुख में फंसे पड़े। माया की बीमारी उथलती है, जैसे दवाई खाओ तो होम्योपैथिक दवाई के अंदर होता है कि आपको बीमारी फैलेगी, एक बार बढ़ेगी फिर आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं, कितने भी विघ्न आए उनसे डरने की जरूरत नहीं, मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी। अब इस मन मना भाव के साथ यदि बाबा को माम एकम को नहीं जोड़ा तो ये महामंत्र ये मन मना भाव उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हम आसुरी संस्कारों को बैठकर अपने आप से समझाएंगे, आसुरी बातें आसुरी विचार हम अपने आप को बैठकर समझाएंगे तो हम असुर ही बनेंगे, देवता बनने वाले नहीं। क्या मन मना भाव करना है वो भी जरूरी है, क्योंकि बाबा ने तो बता दिया कि माम एकम याद करो, सिर्फ मुझ एक को याद करो, ये भी एक मंत्र है, एक शब्द है, एक है महा मन मना भाव, और तीसरा क्या है ये दुनिया वाली मध्याजी भाव, ठीक है ना, ये तीन शब्द दुनिया वाली गीता से लिए हैं और दुनिया वाली गीता वाले इनका अर्थ नहीं जानते, वो बोलते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते, ये बाबा नहीं आकर अर्थ समझाए हैं। तो हर एक मंत्र है ये सलाह है ये, परंतु इन सलाहों में बाबा की सलाह मीन्स परमात्मा की सलाह ही अपने आप को बैठकर मनानी है, सिर्फ सुनना नहीं, मुरली सुनना नहीं, मुरली से सुना वो हमने अपने जीवन में लाने के लिए बैठकर अपने आप को समझाना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति, मनुष्य मन की शांति, मन की शांति कहे हैरान होते हैं, रोज कहते हैं, कहते भी है ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। अरे जब आपने बोल दिया ओम शांति, फिर क्या मांग रहे हो बहन जी? ओम शांति बहन जी, घर में शांति नहीं, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। अरे भाई क्या हुआ, फिर कैसे बोल दिया आपने ओम शांति? छोटे बच्चे की तरह हमने रख तो रखा है परंतु हम अनुभव नहीं कर रहे, हमें इसको अनुभव भी करना है। ओम शांति कहते भी हैं आई एम आत्मा, ओम शांति कहते हैं आई एम आत्मा अर्थात आई एम साइलेंस, आत्मा माना भी शांति, साइलेंस आई एम साइलेंस, मैं शांत हूं। हमारा स्वधर्म है साइलेंस शांति, फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों, फिर मांगना क्यों? अर्थ ना समझने के कारण फिर मांगते रहते हैं। तुम समझते हो ये रावण राज्य है, परंतु ये भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। सारी दुनिया का आम और खास भारत का क्या है? रावण दुश्मन है। सारी दुनिया का आम, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं, क्योंकि भारत वाले ही रावण को जलाते हैं, जो बाहर वाले हैं वो रावण को नहीं जलाते। वहां भारत के लोग चले गए हैं तो वो रावण को जलाते हैं। तो ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ऐसा हाँ जी, हाँ क्योंकि वो आए ही अब है, उनको ये रावण लगता ही नहीं है, उनको ये दुख लगता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति जैसे वातावरण में पैदा होगा उसके लिए तो वही वातावरण है ना अच्छा। जिन्होंने स्वर्ग देखा नहीं, जिन्होंने सतयुग देखा नहीं, वो अब आए हैं, उसे बाबा कहते ये उनकी सत्व प्रधान अवस्था है, उनके लिए तो यही स्वर्ग है। उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है, जो सतयुग में आए ही नहीं, त्रेता में आए ही नहीं, और जो द्वापर में भी नहीं आए, जो आए ही घोर कलयुग में है, उनके लिए तो यही जीवन है, यही स्वर्ग है। वो इन बातों से दुखी नहीं होते। कोई विकारों में फंसा हुआ, कोई शराब के नशे में या किसी और प्रकार के, मतलब उन्हें कोई बुरा नहीं लगता, वो इसमें गर्व समझते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो उनके लिए तो अभी स्वर्ग आया है, अभी आए हैं, अभी स्वर्ग है उनके लिए। उनको क्या पता ऐसा भी जीवन होता है जो सतयुग में रहते थे, सिर्फ साग सब्जियां खाते हैं, ये भी कोई जीवन हुआ?
जो कन्वर्ट हो गए उनको अच्छा लगेगा,
जो आए ही उसमें कन्वर्ट क्या हुए? वो कन्वर्ट तो वो होंगे ना जो सतयुग में आए, वो कन्वर्ट हुए, उनको जो है ना अब प्याज लहसुन मांस मदिरा ये सब चीजों का सेवन करना उनके लिए वो लगता है कि उनको ही समझ में आएगी बात, है ना? उनको समझ में नहीं आएगी, वो कहेंगे राइट है, ठीक है, क्योंकि वो आए हैं, उनको परिवार में मिला ही वही है खाने के लिए, तो जो उनको खाने के लिए मिला है तो वही उनका जीवन है ना, वही उनकी सत्व प्रधान अवस्था है। और उसके बाद जो उनके जीवन में दुख कष्ट आने हैं वो उनको महसूस होगा भी दुख है कष्ट है। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष चलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर हर कल्प में जलाते आए। क्यों क्यों जलाते आ रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बड़ा है। विकार पांच विकारों में सब फंसते हैं, जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य है ना, जन्म ही भ्रष्टाचार से होना मतलब माया से होना ना, है ही नहीं ज्ञान, है ही नहीं समझ, है ही नहीं गुण, है ही नहीं पवित्रता, है ही नहीं, तो अपवित्रता से ही जन्म हुआ ना उनके लिए, वो अपवित्रता ही जीवन है, वही सब कुछ है। अब एक सुअर है नाली में पड़ा है, उसे कभी ये शिकायत नहीं होती कि मैं नाली में क्यों पड़ा हूं, ये सारे तो बहुत अच्छे साफ साफ गद्दे पर सोते हैं और मैं नाली में कीचड़ में सोता हूं, उसके लिए वही स्वर्ग है। अब कितना भी उसे बाहर निकालो वापस वहीं जाएगा। इस समय अथाह दुख है, इसको इसका निमित्त कौन? रावण को कह देते हैं। अब ये कोई को पता ही नहीं कि दुख किस कारण होता है, ये तो राज्य ही रावण का है, सबसे बड़ा दुश्मन ये है, हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी ये पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं, क्यों नहीं बनते? क्योंकि रावण कभी मरता ही नहीं, रावण मरे तो हम लंका के मालिक बने। कितना पैसा खर्च करते हैं? बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहां गए? दशहरे पर लाखों रुपया खर्च करते हैं रावण को मारकर, फिर लंका को लूटते हैं, लंका देखिए लूटती हुई लकड़ी उठा के लाएंगे, कहेंगे हमें लंका लूट ली, रावण की लंका लूट ली हमने। कुछ भी समझते नहीं, रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं, आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं समझते हैं कि सतयुग में ये थे ही नहीं, ये पांच विकार थे ही नहीं, जिनको हमने जीवन समझ रखा है ये तो वहां था ही नहीं, पता ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है। ये रावण को जलाना आदि होता नहीं, पूछो ये कब से मनाते हो, दुनिया वालों से पूछो, कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। अच्छा फिर उनसे पूछो रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। अच्छा तो ये सब समझ की बातें हैं, मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, ना जानवर है ना मनुष्य है, कोई काम के नहीं है। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते नहीं, बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुख बना सके, दुख तो जरूर भोगना पड़ेगा, सीढ़ी उतरनी है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चे बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सबको दुखों की दवाई, सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं या मुक्त होने की दवाई बताते हैं। वे वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, कोरोना काल में देखा कितने डॉक्टर मरीजों को ठीक करते करते चले गए, और ये वैद्य ये ना मरे,
हमारा
कितने पेशेंट मर जाओ, सारे मर जाओ, ये एक ऐसा है जो नहीं मरता।
सबसे बड़ा
ये तो अविनाशी वैद्य है, ये भी समझते हो, दुख भी अथा है सुख भी अथा है, बाप अथा सुख देते हैं, वहां दुख का नामो निशान नहीं होता, सुखी बनने की ही दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो। तो पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख होगा। गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है, आत्मा और जीव, और गीता दुनिया वाली क्या कहती है, प्रकृति और पुरुष का खेल है। पुरुष माना आत्मा, जीव माना प्रकृति, पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर और आत्मा का खेल है। ये बाबा दुनिया वालों के हिसाब से समझा रहे हैं। निराकार आत्मा अविनाशी है। निराकार आत्मा कैसी है? अविनाशी है। और साकार शरीर विनाशी है। इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा ना सके, पतित तो जा ना सके, इसलिए मां एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, ये भी बताता हूं, माया विघ्न जरूर डालेगी। मैं दवाई दे रहा हूं वो तो उसके साथ बाबा कहते ये भी बताता हूं माया विघ्न जरूर डालेगी, क्योंकि जो तुम्हारी गंदी आदतें बनी हुई हैं वो आदतें आपको मजबूर करेंगी, बाकी कहीं बाहर से नहीं आना। हमने जो आदतें खुद संस्कार ही गंदे बना लिए हैं और वो गंदे संस्कार आपको रोकेंगे। माया कुछ नहीं है, वो गलत संस्कार ही को माया कहते हैं। वो संस्कार बनाए भी किसने हैं? हम आत्माओं ने बनाए। जो भी हमारे अंदर गंदी आदतें हैं वो कोई बाहर से नहीं आई है, वो हमने अपने जीवन में लाई है। अब हमें उनको बाबा की श्रीमत पर मन मना भव करके अपने जीवन से निष्कासित करना है, निकालना है। तुम रावण के ग्राहक हो ना, हम उन विकारों को प्रयोग करने वाले हैं ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फतकेंगे। कौन फतकेगा? हम आत्मा फतकेंगी। इतना फतकते हैं कि बाबा को छोड़ देते हैं। छोड़ो बाबा को, अब दुखी होते रहे, स्वर्ग में सुख मिलेगा। क्या करना है स्वर्ग के सुख? अब जो सुख मिल रहा है उसको हम छोड़ दे, में पागल बनाते हैं हमें। हम आत्मा खुद ही फतकते हैं। इसके बिना मैं कैसे जीऊं? दुनिया कैसे चलेगी? यही तो जीवन होता है, इसी के लिए तो संसार में है, इसी के लिए तो हमें पढ़ाई की, इसी के लिए शादी की, इसके लिए नौकरी कर रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं भाई? किसके लिए कमा रहे हैं? कितना कमाल की बात है कि हम दुख के लिए कमा रहे हैं। परेशान होंगी तो बाप समझाते हैं ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। बाबा कहते मैं कोई दवाई नहीं देता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। दवाई ये है कि याद की यात्रा। दवाई क्या है?
याद की यात्रा।
ये एक ही दवाई से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। याद की यात्रा क्या बला होती है? नहीं, याद की यात्रा बना, यात्रा हो अपने अंदर को सुधारना, अपने जीवन से अवगुणों को निकालना, आसुरी संस्कार आदतें जो बनी हुई हैं उनको खत्म करना। बाकी कोई हमने मंदिरों में थोड़ा जाना है, पहाड़ों पर थोड़ा जाना है, कहीं जाना थोड़ा है। ये यात्रा करनी है कि मेरे अंदर से ये दुख देने वाले संस्कार, ये दुख देने वाला जो रूप बना है इसको खत्म किया जाए। मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को अगर
मेरे को
याद करेंगे कब, निरंतर, एक शब्द और रह गया इसमें, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, राम 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 राम, अंदर ही अंदर करते रहे। वह पढ़ते भी रहेंगे, राम 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 करते रहेंगे, इतना पक्का संस्कार बना लेंगे, चाह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे, राम 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 राम, अंदर अंदर चलता रहेगा। बस इतना कड़ा संस्कार बना लेते हैं कि वो अंदर ही अंदर चलता ही रहेगा, चाहे ऊपर से कुछ भी करते रहेंगे, ऊपर से खाना पीना करना जो कुछ भी होगा, परंतु राम 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 अंदर अंदर चलता ही रहेगा। कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, गुरु, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है, उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना है, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा हमने 108 बार ये राम राम बोला है, अब ये दिवंगत आत्मा के प्रति सब दान कर दो, अब इसका फल उस दिवंगत आत्मा को मिले, ऐसा कह करके आप परमात्म अर्पणम करो ताकि परमात्मा उसको ये सुख दे दे। जब आवे तो पूछना आएगा क्या करने, यदि किसी आत्मा का पार्ट है तो आएगी, अदरवाइज कोई भी आत्मा वापस नहीं। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं बनी हुई हैं, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि भी कोई करेंगे नहीं, झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे ना, कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़ा ऐसा करते हैं। यहां फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, हमारा बाबा तो बिल्कुल अलग है, तो मुंह का प्रयोग किया पागल, नहीं मुंह का प्रयोग नहीं करना, कान का सुना नहीं, नहीं कान का प्रयोग नहीं करना, आंख से देखे नहीं, आंख भी शरीर का प्रयोग ही नहीं करना, तुम आत्मा हो भाई, बताओ क्या करें। राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, ये तो आज जपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो, बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूं, बिगड़ गया बदल गया, वैसे कहता मैं राम हूं, मैं कोई राम नहीं हूं, राम तो त्रेता का था, भगत पक्के भगत बैठे बाबा के सामने, डर लगता है, डरपोक है बाबा, बाबा डरपोक है ना, फिर क्यों क्यों मुख कर रहा है भाई,
बहका रहा है बाबा भक्तों,
हाँ
भक्तों को बहका रहा है,
अब करें क्या, वैसे कहता है मैं राम हूं, दशरथ का बेटा कोई राम नहीं होता, और आज कह रहे हैं दशरथ का बेटा राम होता है,
जब से यहाँ रहा है पूरा
नहीं, यहाँ तो मुरली में क्या कह रहे हैं ना, अब यही तो गड़बड़ हो जाती है ना। मैं कोई राम नहीं हूं, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है ना, उनको तो जपना नहीं है ना। अब समझाते, अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरण करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। जब बाल आवे उस बाल को कैच करने के लिए बॉल के साथ पीछे हटो, उसको पीछे लो, नहीं तो हाथ टूट जाएगा और बॉल भी हाथ में नहीं आएगी। ये क्रिकेट भी देखा होगा बाबा ने, वैसे समझ में आ गया होगा इसको कहना। जो भी बैठे हैं मेरे सामने ये भगत बच्चे बैठे हैं, इनको यदि मैंने एक ही बार में कह दिया कि दशरथ का बेटा राम नहीं है तो ये जो है ना उठकर भाग जाएंगे। इनको बिठाए रखो, इनको पकड़ के रखो, इनको बड़ी युक्ति से समझाओ, और फिर समझा भी दिया कि राम राम जपने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम उस राम को जप रहे हो जो त्रेता का राम था। और तुम उस राम की पूजा करते करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, तुम और पतित बन गए हो। क्योंकि वो सब है अनराइटियस, राइटियस तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठे हैं। साथ के साथ पहले उनको थमाया और फिर उसको कहा, तो पहले किसी को भी एकदम मतलब नहीं कह देना है, परंतु प्यार से उसे समझाना है कि ये राम नहीं है, ये अनराइटियस है। राइटियस तो एक बाप है बस, ये झूठा राम है, विनाशी राम है। वे तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। ये दुनिया एक भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे।
भाई जी रामायण का तो राम है ही नहीं।
अब आपने देखा ना, मैं क्या करूं, ये आपका बाबा है,
जो नॉवेल का कैरेक्टर है।
रामायण का कैरेक्टर तो है ना, वो बेशक राम हुआ नहीं पर तो जो दुनिया पढ़ती आ रही है वो कैरेक्टर तो है ना रामायण का। तभी तो पूरी दुनिया के अंदर जहां भी रामायण होती है वो राम के कैरेक्टर को तो दिखाएगी ना। इतनी रामायण लिखी गई है, रामायणों की संख्या नहीं बता सकते, इतनी कॉपी कर दी गई है। उनको याद करे, बे इतना बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। बेहद के वर्षा देने वाले बाप को याद करे तो खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे ये सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, बाबा कृपा नहीं करेगा, नहीं मना कर दिया। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, ये समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे, उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं, ऐसा बनना है बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की, सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे। शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसी को पता नहीं। हमें पता है किसी को पता नहीं है तो क्या समझ याद करेंगे, क्या याद करें। तुम जानते हो, तुम जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता। जब सत्युग होता है तो उसको क्या कहा जाता है, देवी देवताओं का संसार, देवी देवताओं की दुनिया, दैवी दुनिया। उन्हें ये नहीं कहा जाता ये मनुष्यों की दुनिया है, नहीं कहा जाता। सत्युग को देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता है। मनुष्य नाम होता ही नहीं, स्त्री पुरुष नाम होता ही नहीं। क्या नाम होता है,
लक्ष्मी
नारायण, फलाना देवता। वो है डीटी वर्ल्ड, ये है ह्यूमन वर्ल्ड, वो है देवी दुनिया और ये है मानव जीवन, मानव संसार। आजकल क्या कहते हैं भाई, मान मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल है। आज कहते हैं मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल है। यह है ह्यूमन वर्ल्ड, ये सब समझने की बातें हैं भाई। बाप ही समझाते हैं, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सरित तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वह कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वे है डीटी वर्ल्ड, ये है ह्यूमन वर्ल्ड, फर्क है ना। ये बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए। वो क्या समझते हैं, देवी देवताओं के तो जब थे लाखों साल बीत गए, यहां तो कोई को देवता कह नहीं सकते, इसलिए उनकी मूर्तियां रख देते हैं। वो कैसे थे, ऐसे थे जी, ये फोटो रखा देख ले, कहां गए, जवाब नहीं है। कहां गया राम भाई, जब वो अमर है, अविनाशी है, वो परमात्मा, कहां गया गणेश जी, कहां गए हनुमान जी, कहां गए
सब जगह। ओरिजिनल नहीं है,
ओरिजिनल रूप नहीं है, नकली रूप को भी वो तो मानते हैं ना, ये थे। कहां गए, कहते सर्वव्यापी है, अमर है, विनाश तो ना होता है, आप जब बुलाओ आ जाएंगे। गीत भी बना दिया, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तो मीरा बन के तो देखो, भीलनी बन के तो देखो, ऐसी बातें बता देते हैं जो समझते हाँ हमारी गलती है, हम भीलनी बने नहीं। अपने चुनरिया के दाग मिटा के तो देखो, अब वो मिटेंगे नहीं, वो आएंगे नहीं। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, रावण बड़ा भारी दुश्मन है। इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, ये कौन है किसी को पता ही नहीं है। ये है पांच विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। पांच विकारों का राज्य है ना, सब में पांच विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीच गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सब की बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलना चाहिए ना भाई। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, ये पॉइंट्स समझानी थी। हु बहु कल्प पहले, कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे, सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वे आगे चलकर बहुत फील करेंगे, ये सौकारों की दासी बनेंगी। ये राजाई घराने की है, परंतु कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सौकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े सौकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सन्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। मैं बाबा आके सन्मुख पढ़ा, सारे थोड़ा बाबा के पास पढ़ने के लिए आएंगे, शिव बाबा से मिलेंगे। तुम अभी सन्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहां बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात कहते हैं मन मना भव, कहते ना। इस एक मंत्र से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, मन मना भव। ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं, बाप कहता है मन मना भव, टीचर क्या कहता है मध्याजी भव। ये बाप भी है और टीचर भी है। गुरु भी है। गुरु के रूप में क्या कहेगा? मां में कम याद करो, बस इसलिए कहते हैं एक गुरु करो, दूसरा गुरु नहीं करना। गुरु बस एक बार किया जाता, एक किया जाता।
आप क्या कहेगा? मन मना भाव। क्या कहेगा?
मध्याजी भाव।
और सदगुरु क्या कहेगा?
मां में कम याद करो, क्योंकि मध्याजी भाव का मतलब है विष्णु चतुर्भुज बनना। उसके बनने के लिए जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई पर अपने आप को चलाना, जो बाबा कह रहा है वो अपने आप को समझाना, जो गुरु कह रहा है। पर बाप एक रूप तीन है, बाकी जैसे भी करो, पर हमें मेन बात कहने का मतलब है कि एक बाबा की श्री मत पर अपने आप को समझाना, अपने आप को परिवर्तन करना, याद की यात्रा। याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे, तीनों ही याद रहे, बाप, टीचर और गुरु, तो आपका हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए ये बता दो भाई। बाप ही पढ़ाते हैं, बाप ही साथ लेके जाते हैं, अब ऐसे बाप को कितना कहना मानना चाहिए इसका? 10%, 15%, 20%, 100%। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से क्या मिलना, वो कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो कि एक बाप है, हम उनके सब ब्रदर्स, बच्चे सब ब्रदर्स हैं, ये बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे, इस छी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वो सतयुग में आते हैं। वो कहां आते हैं?
सतयुग में।
अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु को तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं, वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। श्री मत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। पांच विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्यारे क्या बनो? फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है कितने खुश होते हैं? फरिश्ता अर्थात, फरिश्ता क्या होता है? अर्थात सर्व के प्यारे। फरिश्ता कौन होता है? जो सबसे प्यार करता है। और जो सबसे प्यार करता है वो सबसे न्यारा होता है, किसी से प्यार नहीं करता। जो सबसे प्यार करता है वो किसी से प्यार नहीं करता, ये उल्टी उल्टी बातें हमें बाबा पढ़ाता है। जो सबसे प्यार करता है वो किसी से प्यार नहीं करता,
किसी से लगाव नहीं, सबको एक जैसा देखते हैं, लगाव नहीं किसी के साथ।
बच्चे से प्यार नहीं है तो लगाव तो प्यार होता है ना, अटैचमेंट नहीं है, परंतु हमें प्यार का प्यार के साथ ये कहा कि न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस जरूर चाहिए। सिर्फ लव 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 नहीं, सिर्फ ला 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 नहीं, लव एंड लव का बैलेंस होना चाहिए। बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हमने सबके साथ लव भी करना है और बैलेंस भी करना है। जितनी बात बाबा ने श्रीमत दी है कि माननी है, बस उतनी बात माननी है। जहां जहां हम ड्यूटी जा रहे हैं वहां वहां ये हमें बहुत ध्यान से सोचना है। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि आपकी भावना प्यार की हो, चाहे वो नफरत कर रही हो, वो ईर्ष्या कर रही हो, वो बदले की भावना कर रही हो, पर तो आपने उसको क्या देना है?
प्यार।
कौन सा प्यार देना है? रूहानी। ये लाइन याद रखनी है। कोई कैसी भी आत्मा हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि वो इस समय परवश है, वो इस समय परवश है, और हमने उसके कारण परवश नहीं हो जाना। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जिसने सब कुछ पाना था पा लिया, वही तो खुश रहेगा, वही तो सुखी होगा, वही तो खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।
याद करेंगे तो बीमार है।